ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः प्यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ शल्यों का प्रकरण चल रहा है। यह संसारी प्राणी मोहवश मोहनी कर्म के उदय में मोहवश यह क्या करता है और कुछ नहीं करता। बाह्य जो चेतन अचेतन पदार्थ हैं इन पदार्थों के प्रति मोहित होता है, मूर्छित होता है। यह बाह्य मूर्छा भाव इसे स्वयं को भुलाकर पर में मग्न करा देता है। जब पर वस्तुओं में यह आत्मा मग्नता को प्राप्त होती है उस वक्त स्वयं को भूलकर परमय हो जाता है। परमय होने का मतलब स्वयं को भूलना, मैं कौन हूँ ये पता नहीं, पर क्या है यह भी पता नहीं, बस जिसमें मग्नता आ गई है, जिसके प्रति वह मूर्छित हो गया है, वह मूर्छा भाव इस आत्मा को शल्योत्पत्ति में कारण माना है। पर के प्रति उसको पाने की प्रगाढ़ता, प्रगाढ़ भाव, प्रगाढ़ परिणाम, यही तो शल्य है। उन पदार्थों को पाने के प्रति ऐसे परिणाम कर बैठता है कि मैं कौन हूँ यही पता नहीं और मेरे व्रत क्या हैं यह भी पता नहीं, मुझे उपाधि भूत तत्व क्या है इसका भी भान नहीं। इस प्रकार से परमार्थ के कारणीभूत जो व्रत आदि हैं उसके मूल्यांकन को भी भुला सकती है यह शल्य। और जब भूल जाए तो सारे गुणस्थानों को, ऊपर के गुणस्थानों को त्याग करके नीचे आना पड़ता है इस आत्मा को। नीचे आने के बाद भी आत्मा ही है और ऊपर जाने के बाद भी आत्मा ही होता है, परंतु स्वयं के सुख को छोड़कर पर के सुख के आनंद के लिए नीचे आना पड़ता है, नीचे आता है। यह नीचे आने की रीति कब से चली आ रही है, अनादि काल से है, नीचे रह रह करके आदत पड़ गई है, ऊपर जाने का सोच ही नहीं। ऊपर जाने के संबंध में जब तक यह चिंतनशील नहीं होगा और उसमें भी आसक्ति के साथ चिंतनशील नहीं होगा, तब तक यह ऊपर नहीं उठ सकता। ऊपर उठने का एक ही मार्ग है, आत्मा को ऊपर के गुणस्थानों में जो गुण प्रकट होते हैं, गुण प्राप्त होते हैं, उनके प्रति आसक्ति का भाव जगे, यह परम आवश्यक है। जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थानों में बढ़ता है, आत्मा गुणों से समृद्ध होता है, गुणों से विकसित होता है, गुण उसके भीतर अधिक होते चले जाते हैं। जब गुणस्थानों को ही पार कर देता है तो संसार मुक्त कहलाकर वह अनंत गुणों का धाम बन जाता है। पहले गुणस्थान में यह आत्मा गुणों से शून्य होता है और जैसे जैसे गुणस्थानों को बढ़ता जाता है, वैसे वैसे थोड़े थोड़े गुणों को हासिल करता हुआ ऊपर जाता है। इसलिए इन 14 गुणस्थानों का नाम गुणों के विकास के ये स्थान होने से इनका नाम गुणस्थान पड़ा है और नाम वह सार्थक है। पहले गुणस्थान को भी गुणस्थान ही कहा और ऊपर के सारे गुणस्थानों को भी गुणस्थान कहा, जबकि पहले गुणस्थान में गुणहीन होते हुए भी गुणस्थान कहा। किंतु गुणहीन होकर के भी यह आत्मा अनंत गुणों को प्रकट करने में क्षमता रखता है, उसके पास वह पात्रता है, इसलिए गुणस्थान कहना पड़ा। जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में गुणों को प्रकट करने की क्षमता हो, उसको हम जड़ तो नहीं कह सकते, चेतन ही कहना पड़ता है। आत्मा चाहे पहले गुणस्थान में हो, चाहे अंतिम गुणस्थान में हो, चाहे मोक्ष अवस्था में हो, उस आत्मा को चेतन ही कहना पड़ता है, जीव ही कहना पड़ता है। अपने गुणों के द्वारा जो जीता है, जीता था, जीता रहेगा, उसी का नाम तो आत्मा है। गुण तो अनादि है, गुण का विनाश नहीं हो सकता, इसलिए प्रथम गुण स्थान में रहने वाले आत्मा को भी प्रथम गुणस्थानवर्ती, प्रथम गुण में रहने वाला कहा गया है। प्रथम गुणस्थान में कैसा गुण? ज्ञान गुण तो है, भले ही वह ज्ञान गुण मिथ्यात्व के रूप में हो, किंतु जानने और देखने की शक्ति क्या नष्ट हो गई है? जानने और देखने की शक्ति आत्मा से कभी नष्ट नहीं हो सकती। भले ही एक इंद्री पर्याय को धारण कर वह निगोद में भी क्यों न चला जाए, ज्ञान नष्ट नहीं होता, ये निश्चित बात है। यह दीपक ज्ञान का दीपक बुझ नहीं सकता। ये भले ही ज्योति की अपेक्षा से कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, लेकिन बुझ नहीं सकता। यह दीपक एक ऐसा दीपक है जिसको हम बुझा नहीं सकते। छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती, ज्योति बुझ नहीं सकती। यदि ज्योति बुझ जाए, यदि ज्योति नष्ट हो जाए, तो कभी भी यह आत्मा पुनः जीवित नहीं हो सकेगा। एक बार बुझने के बाद दीपक को जलाना संभव नहीं है? ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। चेतन इसका लक्षण है, लक्षण को नष्ट करके आत्मा अन्य पदार्थ में, अचेतन पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकता, यही इसकी विशेषता है। तो गुण तो है ना, गुण भले ही आच्छादित हो, गुण भले ही प्रदूषित हो, गुण भले ही वैभाविक हो, दूषित हो, लेकिन है तो भीतर है, उसी गुण का विकास करना है। प्रदूषण को हटाते हटाते, प्रदूषण जो बढ़ गया है उसी को तो हटाना है, और सारा प्रदूषण जिस दिन दूर हो जाएगा, वह शक्ति अनंत का रूप धारण करके उभर कर ऊपर आ जाएगी और उसकी अनुभूति आत्मा को होने लग जाएगी। गुणस्थानों में रहते हुए ही ऐसी कौन सी आत्मा है जो उसकी समस्त गुण के समस्त पर्यायों को शुद्धता के रूप में अनुभव कर सके? ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है। अरहंत परमिष्टि की आत्मा भी शुद्धता की अनुभूति पूर्णतः नहीं कर सकती, क्योंकि वैभाविक परिणति वहां भी है, शरीर है, आघाती कर्मों का बंधन है, वैभाविक परिणति का अनुभव वहां पर भी है। आत्मा पूर्णतः द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से मुक्त हुए बिना स्वयं की परिणति का, स्वतंत्र परिणति का, स्वतंत्र विशुद्ध परिणति का अनुभव नहीं कर सकता। यह परमार्थ की यात्रा है। इस यात्रा में व्रतों को पालन कैसे करें, जब यह प्रश्न आता है तो शल्यों से रहित होकर के ही व्रतों का ग्रहण किया जाना चाहिए। आत्मा विशुद्ध परिणाम के साथ व्रतों को धारण करे, इसलिए शल्यों का उपदेश किया गया। शल्य दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य शल्य और भाव शल्य। द्रव्य शल्य के भेद किए गए, द्रव्य शल्य में भी कर्म द्रव्य शल्य और नो कर्म द्रव्य शल्य दो प्रकार के शल्य हैं। कर्म द्रव्य शल्य का अर्थ होता है भाव शल्योत्पत्ति के अंतरंग निमित्त कारण रूप में जो होता है वह कर्म द्रव्य शल्य है। उसके भी दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य और चारित्र मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य। दर्शन मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य का अर्थ होता है जो अतत्व श्रद्धान रूप भाव शल्योत्पत्ति का अंतरंग निमित्त कारण है, वह दर्शन मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य। चारित्र मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य भी है जो शंका कांक्षा आदि असयम रूप भाव शल्योत्पत्ति के अंतरंग कारण रूप में होती है, वह शल्य चारित्र मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य है। कर्म द्रव्य शल्य में दो भेद करना चाहिए, जो कि मोहिनी कर्म को लेकर के ही ये दो भेद होते हैं। अन्य कर्मों को क्यों नहीं लिया जा सकता, मोहिनी कर्म को ही लिया है। शल्य की कोटि में, क्योंकि अन्य कर्म शल्य की उत्पत्ति में कारण नहीं बन सकते, इसलिए अन्य कर्मों से शल्य नहीं हो सकती। मोहनी कर्म ही शल्य की उत्पत्ति में कारण है, क्योंकि अतत्व श्रद्धा कराने की शक्ति मोहनी कर्म में है और इच्छाएं, कांक्षाएं, अपेक्षाएं जो उत्पन्न होती हैं चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, तो वो भी मोहनी कर्म में ही है शक्ति। ज्ञानावरण आदि कर्म, अंतराय आदि कर्म, ये जो कर्म हैं, इनके पास जो मोहनी कर्म कार्य करता है वह कार्य करने की क्षमता अन्य कर्मों में नहीं। जो कर्म जो कार्य करता है वह कार्य अन्य कर्म नहीं कर सकता, यह सिद्धांत है ना? सिद्धांत तो है ही। जो अंतराय कर्म कार्य करता है वह मोहनी कर्म कार्य नहीं करेगा, जो कार्य ज्ञानावरणी कर्म करता है वह कार्य अंतराय कर्म नहीं कर सकता। परस्पर में ये सारे कर्म अपने अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से ही करते हैं, इसलिए सभी कर्मों का जैसा लक्षण है वैसा ही उनका कार्य भी होता है। इसलिए शल्योत्पत्ति में अन्य कर्म कोई भी कारण न होकर केवल मोहनी कर्म ही कारण बनता है। अन्य कर्म मोहनी कर्म के लिए सहयोगी हो सकते, ठीक? हाँ, सहयोग इनका इनडायरेक्ट सहयोग तो रहता है, किंतु सीधा शल्य की उत्पत्ति में ये कारण नहीं बन सकते। नौ कर्म द्रव्य शल्य भी दूसरा भेद है, जो यह नौ कर्म तीन प्रकार का है। यह भाव शल्योत्पत्ति के बहिरंग निमित्त कारण है। देखो, द्रव्य कर्म को अंतरंग निमित्त कारण माना, जो मोहनी कर्म है, और भाव कर्म को नौ कर्म को बहिरंग निमित्त कारण माना, क्योंकि नौ कर्म बाहर ही है ना। नौ कर्म क्या क्या? तो शरीर से लेकर बाह्य जो पदार्थ हैं संसार में, ये सारे के सारे नौ कर्म कहलाते हैं। जो हमारे चक्षु इंद्रिय के गोचर हैं वे सभी नौ कर्म हैं। कर्म हमारे चक्षु इंद्रिय के गोचर नहीं है, क्या है? कर्म नहीं है। कर्म का फल तो है, लेकिन कर्म चक्षु इंद्रिय का गोचर नहीं बनता है। जो चक्षु इंद्रिय का गोचर नहीं है वो सभी नौ कर्म ही तो है। धन संपत्ति बाह्य जो दस प्रकार का परिग्रह कहलाता है, ये सारा का सारा नौ कर्म तो है। शरीर भी नौ कर्म है, जो आंखों से दिखाई देता है, ये शरीर को लेकर के भी शल्य की उत्पत्ति हो सकती है। कोई अन्य पदार्थ को लेकर के भी शल्य की उत्पत्ति हो सकती है। हमारे लिए इष्ट पदार्थ कोई छूट रहा हो तो विकल्प होता है, विकल्प होते समय आर्त ध्यान होता है, निदान अर्थ भी हो सकता है। निदान अर्थ होते होते फिर वह यदि मान लो वृत्ति है, व्रत की अवस्था में निदान बंद कर लेता है, तो निदान अर्थ से निदान बंद पर पहुंच जाता है, और निदान बंद पर पहुंचने के उपरांत भावशल्य की उत्पत्ति हो जाती है। और भावशल्य की उत्पत्ति किस कर्म के उदय से हुई? तो ये मोहनी कर्म, जो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है, यह निमित्त बनता है। और इस प्रकार से व्रत सहित आत्मा को, ऊपर के गुणस्थानों में रहने वाली आत्मा को ये दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का उदय होने पर भावशल्योत्पत्ति होकर के, भावशल्योत्पत्ति होकर आत्मा नीचे उतर करके आ जाता है, इसी को कहते हैं शल्य। यह नौ कर्म यह भी कम नहीं है, इसी का ज्यादा हाथ है। नौ कर्म का ही ज्यादा हाथ रहता है, क्योंकि जो दिखता है उससे ज्यादा प्रभावित होता है आत्मा। जो दिख रहा है, दिखता है, जिससे मोहिनी कर्म का उदय हो सकता है, दर्शन मोहिनी का उदय हो सकता है, चारित्र मोहिनी का उदय हो सकता है, ऐसे हो सकने योग्य जो कर्म हैं अंतरंग में, उदय में आ सकते हैं, ऐसे उदय में आने के लिए कारण कौन बनता है बाहर में? नौ कर्म ही कारण बनता है। दर्शन मोहिनी के, दर्शन मोहिनी का उदय आने के लिए यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का उदय आने के लिए हमारे लिए नौ कर्म के रूप में कौन कारण बनते हैं, जरा विचार करेंगे? अनायतन, कुसंग, कुसंगति, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, रागी देव, ये अनायतन बाह्य निमित्त नौ कर्म है। ये नौ कर्म को देख करके आत्मा प्रभावित होती है कि यह रागी देव मुझे हित कर सकता है, मुझे कुछ दे सकता है। इस प्रकार की अंधश्रद्धा के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं दर्शन मोहनी के उदय से होते हैं, लेकिन नौ कर्म के बिना भी नहीं तो होते हैं ना। नौ कर्म निमित्त पड़ता है, अनायतन नौ कर्म बन जाता है। और अनायतन कितने प्रकार का है? छह प्रकार का। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और इनको मानने वाले। हाँ सेवक, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र तो हमेशा अपने पास नहीं रहते, पर उनके सेवक तो हमसे घिरे रहते हैं हमेशा, उन्हीं के बातों में आकर के हम प्रभावित होते हैं, उनके वचनों से प्रभावित होते हैं, उनके माहौल में रह करके वैसे ही बनने के परिणाम आ जाते हैं। और ऐसा हो करके हमारा दर्शन मोहिनी भी कहता है चलो आप बुला रहे हैं तो हम भी उदय में आते हैं। आत्मा ही बुलाता है, आत्मा कुसंग करता है। नौ कर्म के साथ कुसंग करने पर दर्शन मोहिनी का उदय होता है। दर्शन मोहिनी का उदय होते ही भावशल्योत्पत्ति होती है। भावशल्योत्पत्ति होने के उपरांत वह प्रथम गुणस्थान में आ जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि यदि आप अपने व्रतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप यदि अपने ऊपर के गुणस्थानों में रह करके उन गुणस्थानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कहाँ रहे उस गुणस्थान के योग्य जो बाह्य आयतन होते हैं उनके साथ रहे, सत्संग में रहे। तो ऊपर के गुणस्थानों में आप स्वयं हैं, तो ऊपर के गुणस्थानों में ही जो रहते हैं उनके संग में रहो। ऐसा संग उत्पन्न करो, पैदा करो, निर्माण करो, सब मिल के रहो, पार्क बनाओ, नाम भी प्रतिमा पार्क रखो, वहां जीवन जियो, तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। कितना अच्छा रहेगा, कितनी एक अच्छी परिकल्पना है ये। धर्म की दृष्टिकोण से कभी बिल्डिंग बने हैं? संसार की दृष्टिकोण से तो बहुत बार बनाए हैं। स्वर्ग में भी बिल्डिंग मिले तो संसार के अनुकूल मिले, इंद्रिय विषयों के अनुकूल मिले, पर आत्म साधना के अनुकूल यदि कोई बिल्डिंग बन जाता है तो शल्य आ ही नहीं सकती आपको, क्योंकि सारा वातावरण वहाँ अनुकूल रहेगा, धर्ममय रहेगा, और जहाँ जिस कोने में जाए तो धर्म का चिंतन होता रहता है, वहाँ पर अनायतनों का संपर्क नहीं रहता। सभी आयतन आयतन मिल करके साथ में रहे तो कितनी अच्छी बात है। वो पूरा बिल्डिंग पंचम गुण स्थान का और आप भी पंचम गुण स्थान के बिल्कुल उसकी नींव भी पंचम गुण स्थान का और सारा पंचम गुण स्थान का, वहां रहना चाहिए, वहां का खाना खाना चाहिए, वहां का पानी पीना चाहिए, तो परिणामों की विशुद्धि ऑटोमेटिक बनी रहती है। नो कर्म हमारा अच्छा हो तो अच्छा, नो कर्म को ही आयतन कहा है, और नो कर्म हमारा प्रदूषित हो तो नो कर्म प्रदूषित नो कर्म को ही अनायतन कहा है। उससे बचकर इसकी संगति में रहना कितनी अच्छी परिकल्पना होगी। दूर दूर के लोग, भारतवासी लोग देखने आएंगे कोल्हापुर की प्रतिमा पार्क क्या चीज है, कैसे वहां पंचम गुण स्थान वर्ती अपने अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं, कैसे आयतन के संगति में रह करके नो कर्म सत्संग नो कर्म के संगति में रह करके किस प्रकार से औरतों का पालन कर रहे हैं, देखने आएंगे कि नहीं। और आचार्य श्री आ जाएंगे तो एक साथ 11 मंजिल पर एक एक दिन सभी उन प्रतिमा पंचम गुणस्थान के प्रतिमा के उन 11 मंजिलों पर एक एक दिन आहार होगा आचार्य श्री का। शुद्ध भोजन बना है, उत्तम सुपात्र को आहार दान दे रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है, देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं उस बिल्डिंग पर, क्या अद्भुत दृश्य होगा। उसकी भी भावना रखो कि आचार्य श्री कोल्हापुर आ जाएं और ऐसे हमारे पंचम गुणस्थान के इस महल में, महल ही पंचम गुणस्थान है, वहां पर जो भी रहेंगे एक बिल्डिंग में एक तो प्रतिमाधारी निरंतर रहेंगे, भले ही बाल बच्चे प्रतिमाधारी ना हो, और जिनको लेना संभव नहीं है वो प्रतिमाधारी ना हो, लेकिन एक घर में एक व्यक्ति अवश्य पंचम गुणस्थान वर्ती रहेगा तो उसका नाम प्रतिमा पार्क यह सार्थक है। धर्म को महत्व दो, आचरण को महत्व दो, अपने अमूल्य जीवन को महत्व दो। यह जीवन आर्यखंड का जीवन है और आर्यखंड के अंदर जन्म लेकर के भी हमने ऐसे अनंत बार अपने जन्मों को व्यर्थ गंवाया है। एक बार भी हमने ऐसे बिल्डिंग में वास नहीं किया जो बिल्डिंग हमारे लिए पंचम गुणस्थान के परिणामों में सहयोगी बन सकता, बनना चाहिए ऐसा एक बार। उस बिल्डिंग का कोना कोना ये कहे कि मैं भी संयमी हूं और मैं संयमियों के लिए आधार देता हूं। प्रत्येक बिल्डिंग में एक ऐसा रूम जहां पर स्वाध्याय और सामायिक चल सकता हो और उसमें एक जिन प्रतिमा हो, चैत्यालय हो। जब भी फुर्सत मिलता है तुरंत गए भगवान के सामने बैठकर सामायिक करने लगे, जब भी चले गए फुर्सत मिल गया जाकर के स्वाध्याय करने लगे, आत्म तत्व का चिंतन करने लगे, जब भी समय मिला गुरुओं के प्रवचन सुनने लगी, कितना अच्छा रहेगा। भगवान के सानिध्य में, भगवान के समक्ष आपका संलेखना मरण हो अंत में पंचम गुणस्थान के साथ, ये कितनी ऊंची परिकल्पना है। इस परिकल्पना को सामने रखकर बिल्डिंग बनना चाहिए। तो आप उस बिल्डिंग को चाहे 25 लाख में खरीदो, चाहे 50 लाख में खरीदो, चाहे करोड़ में खरीदो, पैसे का कोई महत्व नहीं। उस बिल्डिंग के अंदर पंचम गुणस्थान के साथ अगर आपका मरण हुआ तो सल्लेखना मरण हुआ, सल्लेखना मरण हुआ तो इससे भी बढ़िया बिल्डिंग स्वर्ग में मिलती। संसार के बिल्डिंग में आप मरण नहीं करना है। संसार का बिल्डिंग बाजू में रहेगा, धर्म का बिल्डिंग उसके बाजू में, वहां हमारा सल्लेखना मरण है। और कोई मुनि महाराज महाव्रती का सानिध्य मिले तो कहना ही क्या। मरण के काल में नमोकार मंत्र मुनि के मुख से सुनते सुनते आपका मरण हो गया तो इससे ज्यादा धर्म इस आर्यखंड में तो नहीं। लक्ष्य बना लो और अपने अपने एक एक खंड के लिए रिजर्वेशन करो। हमको ऐसा धार्मिक बिल्डिंग चाहिए, हमको सल्लेखना मरण करना है, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है और हमारी वंश परंपरा को जिनेंद्र भगवान की वंश परंपरा मय बनाना है। निरंतर चलता रहे यह धार्मिक संस्कार अपने घर में, ऐसा बिल्डिंग हमको चाहिए। बिल्डर तो बहुत होशियार हैं आजकल के, आप जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते। जैसे कल्प वृक्ष उसके सामने जाकर के मुझे ऐसा बिल्डिंग चाहिए तो ऐसा बिल्डिंग ले लो, तुरंत जिस डिजाइन का चाहिए उसमें जो व्यवस्था चाहिए उस व्यवस्था के अनुरूप आप उसको प्राप्त करते। आपकी परिकल्पना उसका दान है, उसका प्रदान है। आप जिस परिकल्प जिस डिजाइन का कल्पना करेंगे ना उसी डिजाइन का आ जाएगा। कल्पवृक्ष से ये ग्रहांग कल्पवृक्ष कहलाते हैं जो भोग भूमि में होती भोग भूमि में होते हैं। ग्रहांग घर को देने वाले, भोजनांग भोजन वस्तुओं को प्रदान करने वाले, ये वृक्ष अलग। वाद्यांग बजाने के वस्तुओं को प्रदान करने वाले, आभूषणांग आभूषण देने वाले, वस्त्रांग वस्त्र को देने वाले। ऐसे संसार में हम 10 प्रकार के भोगो भोग सामग्री को उपयोग करते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां होते हैं। भोग वस्तु को भी देते हैं और उपभोग वस्तु को भी। ऐसा जो कल्प वृक्ष के समान बिल्डर होगा उनके लिए आप अपनी परिकल्पना दे दो कि हमारे लिए भोग भूमि में जब हम गए थे उस समय इंद्रिय सुखों के योग्य हमारे लिए घर मिल गया था, किंतु धर्म साधन के योग्य घर नहीं मिला। किंतु हे बिल्डर, तुम उस कल्पवृक्ष से भी महान हो, जरा सहयोग करो। एक बार हम पंचम गुणस्थान के बिल्डिंग में मरण करके जाना चाहते हैं, आर्यखंड को सफल बनाना चाहते हैं, बनाएंगे ना। नीचे एक बड़ा प्रवचन हॉल ऐसा ही रहेगा। कितनी अच्छी परिकल्पना, स्वर्ग से भी अच्छी परिकल्पना चल रही है। जहां मुनियों के प्रवचन निरंतर चलेंगे, निरंतर चातुर्मास होते रहेंगे, निरंतर स्वाध्याय चलेगा, वहां प्रतिमाधारी रहेंगे, निरंतर सत्पात्र दान देंगे, चतुर्थ काल जैसा वातावरण उस बिल्डिंग के कंपाउंड के भीतर रहेगा, बाहर नहीं कंपाउंड के भीतर चतुर्थ काल दिखेगा। ऐसी परियोजना करे, सबसे पहले हम आशीर्वाद आपको देते हैं और फिर बाद में आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने भी जाओ कि हम प्रतिमाधारी सब मिलकर के एक ऐसा बिल्डिंग रिजर्वेशन कर रहे हैं जो हमारे लिए मोक्ष ले जा सकता, मोक्ष मार्ग पर हमको बनाए रखता। लेना हो पूरा लेना, उसमें किचन हो लेकिन फैसिलिटी कम हो। हाँ, फैसिलिटी का मतलब वहां गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, वो चाहिए चाहिए, ये आशा मत रखो, नहीं तो भौतिक जीवन उस बिल्डिंगों में और इस बिल्डिंग में क्या अंतर रहेगा। आपको तो धर्म करना है। हाँ, एक चटाई, चटाई पर सोएंगे तो ही तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नहीं। स्वर्ग में जाकर के गादी पर सो, जो यहां चटाई पर सोता है वहां गादी पर सोता है, जो यहां गादी पर सोता है वहां चटाई भी नहीं मिलती। किल विशिक, हाँ, साधना को महत्व देना, यह मनुष्य पर्याय संयम साधना के लिए प्राप्त हुई है, उस दृष्टि से इसको सोचना है। ऐसा आज तक कहीं भी भारत में ऐसा बिल्डिंग नहीं बना जो पंचम गुणस्थान की साधना को करने के योग्य बिल्डिंग हो और उसमें वही वही लोग रहते हो, सपरिवार, दो प्रतिमाधारी, तीन प्रतिमाधारी, चार प्रतिमाधारी, और ऐसा वह बिल्डिंग बन जाए ना, तो मेरी कल्पना तो ये है कि ऐसा वह एक चैताली भी अगर वहां बन जाता है तो आप 10 प्रतिमा तक बढ़ सकते हैं अपने घर को छोड़े बिना। हाँ, महाव्रति तो फिर 11वीं प्रतिमा अगर लेंगे तो ग्रह घर का त्याग करना पड़ेगा, चैताली वासी नहीं रहेगा। 10वीं प्रतिमाधारी को क्या कहा है, चैताली वासी, घर में ही रहता, घर का त्याग नहीं है लेकिन चैताली वासी, परिग्रह से अलिप्त रहता है लेकिन उस रूम में रहता है जहां पर कोई सांसारिक वातावरण नहीं है, तो वहां पर सांसारिक शब्द सुनाई न दे, कोई बाल बच्चों का डिस्टर्बेंस स्वाध्याय करते समय ऐसा बना लो कि उधर की आवाज इधर न बन जाए, इधर ना आ जाए, और हम अंदर बैठे हैं तो अपने आप में सामायिक में मग्न हैं, स्वाध्याय में मग्न हैं, प्रवचन सुनने में मग्न हैं, ऐसा एक रूम होना चाहिए, वो पंचम गुणस्थान वाला रूम, वो साधना रूम। ऐसे साधना रूम स्वर्ग में नहीं मिलते, भोग भूमि में नहीं मिलते, ये कहीं भी नहीं मिलते, कर्म भूमि में भी नहीं मिल रहे हैं, अब मिलने की संभावना बन गई है। ये बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण। एक भाव में एक मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाने के लिए ऐसी जो परिकल्पना एकदम झलक गई है वो साकार हो। खूब अच्छी तरह से चर्चा करें बनाने से पहले कि किस प्रकार से उसको बनाया जाए। और एक एक देखो, आप जैन हैं, जैन कुल के गौरव हैं, आपका परिवार जैन कुल का गौरव है, आपके परिवार में धार्मिक संस्कार आना चाहिए, वंश परंपरा का संस्कार बचने के लिए सबसे प्रथम निर्माण कार्य, प्रथम आवश्यक वहां पर एक स्थान चैतालय का होना चाहिए। जिस घर में चैतालय नहीं वो जैन घर नहीं। यही चैतालय न होने से घर घर में कुदेवों के फोटो, कुदेवों के रागी देवों के अनायतन वगैरह घर में आते, और जिनेंद्र भगवान घर में रहेंगे तो ये आ नहीं सकते, क्या आएंगे, कभी नहीं आ सकते। तो ये संस्कार देने की प्रथम सीढ़ी है हमारी, बहुत दूर दृष्टि से धर्म और अध्यात्म तत्व को सामने रखकर तीर्थंकरों की वंश परंपरा और सभ्यता संस्कृति को सामने रख करके बिल्डिंग बने और जैन धर्म की प्रभावना उसमें रहने वाले परिवारों से हो, ये हम सपना देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो सपना जल्दी साकार हो। जहां पर कुआ रहेगा, कुएं का पानी अगर कम पड़ जाए तो एक अंडरग्राउंड भी रहेगा जहां पर अमृतमय बरसात के पानी को स्टोर कर सके, वहां पानी स्टोर रहेगा। बिल्डिंग में जितने परिवार रहते हैं उन सब के लिए अमृतमय जल मिलेगा, अमृतमय जल मिलेगा, बरसात का जल अमृत जल है। हाँ, पंचगंगा का कोई कनेक्शन नहीं है, पंच परमिष्ट हैं तो पंचगंगा की क्या जरूरत है। शल्य, कर्म द्रव्य शल्य और नो कर्म द्रव्य शल्य। कर्म द्रव्य शल्य के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य, चारित्र मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य। नो कर्म द्रव्य शल्य के तीन भेद हैं, सचित्त नो कर्म द्रव्य शल्य, अचित्त नो कर्म द्रव्य शल्य, मिश्र नो कर्म द्रव्य शल्य। इधर भावशैल्य, भावशैल्य के कितने भेद, तीन भेद, माया भावशैल्य, मिथ्या भावशैल्य, निदान भावशैल्य। निदान भावशैल्य के भी तीन भेद हैं, प्रशस्त निदान भावशैल्य, अप्रशस्त निदान भावशैल्य, भोगकृत निदान भावशैल्य। इस प्रकार शैल्य के भेद हैं। द्रव्यशैल्य में जो कर्म द्रव्यशैल्य है वह इस सब में मेन है। मोहिनी कर्म अगर जीव के पास नहीं होता तो क्या होता, शैल्य की उत्पत्ति होती नहीं होती। इसलिए आचार्यों का ये उपदेश रहा, यदि आप व्रति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्तव्य है कि शैल्य परिणामों को कंट्रोल में लो, ब्रेक लगाओ। शल्योत्पत्ति में कारण तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व का उदय, सम्यक मिथ्यात्व का उदय, और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी कषाय का उदय। अनंतानुबंधी कषाय के कारण से भी जीव आत्म तत्व को भूलकर, धर्म को भूलकर, धर्म परिणामों को भूलकर सांसारिक परिणामों को धारण कर लेता है। यानी आत्मा और सांसारिक सुख में भेद नहीं करता, उसमय हो जाता। ये शल्य के भाव है। और सम्यक्त्व के भाव कैसे रहते हैं, आत्म तत्व को न भूलते हुए संसार विषय को प्रयोग में लाता है, उपयोग में लाता है। देखो ये महत्वपूर्ण, सम्यक दृष्टि भी इंद्रिय विषय को उपयोग में लाता है कि नहीं लाता है? क्या धर्म को भूल कर लाता है? टारगेट में धर्म रहता ही है। टारगेट में से धर्म अगर निकल गया तो आपके आत्म परिणाम शल्यमय हो ही जाएंगे। परमार्थ, मोक्ष तत्व, कर्म की निर्जरा, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट में इनको जीवित रखते हुए इंद्रिय विषयों में आप प्रवृत्ति भी करते हैं तो अनंत संसार का कारण नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? ये मेन बात है, ये मुख्य बात है। टारगेट में से धर्म को नहीं हटाना कभी भी। ये टारगेट में से सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं हटाना, धर्म को नहीं हटाना, पंचम गुणस्थान के योग्य परिणामों को नहीं हटाना और अनुवृत्ति बनना और इंद्रिय विषयों को भी उपयोग में ले रहे हैं, तो वो इंद्रिय विषय भले ही गुणस्थान के अनुरूप बंद के कारण बनते हों लेकिन आपको संवर तत्व को भी प्रदान करेंगे। वे पंचम गुणस्थान के परिणाम संवर तत्व को भी प्रदान कर रहे हैं, निर्जरा तत्व को भी प्रदान कर रहे हैं और मोक्ष की ओर आपको बढ़ा रहे हैं। ये विशेषता पंचम गुणस्थान में होती है। और टारगेट में से धर्म निकल गया तो पंचम गुणस्थान को छोड़कर हम पहले गुणस्थान में आएंगे, वहाँ पर निर्जरा तत्व भी नहीं, संवर तत्व भी नहीं, धर्म तत्व भी नहीं, टारगेट में सब शून्य हो गए। ये इस प्रकार इसका चिंतन करके हमें आगे बढ़ना है, आत्मा का कल्याण करना है। नो कर्म द्रव्य शैली को देखते हैं, ये देखो, हाँ नहीं, कर्म द्रव्य शैली को परिभाषा के दर्शन मोहनी कर्म द्रव्य शैली क्या कहलाता है? अतत्व श्रद्धान रूप भाव शल्योत्पत्ति का अंतरंग निमित्त कारण। अतत्व श्रद्धा किस कर्म के उदय से होती है? दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी में कौन? मिथ्यात्व के उदय से अतत्व श्रद्धा होती है और सम्यक मिथ्यात्व के उदय से अतत्व श्रद्धा होती है। सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन तो सुरक्षित रहता है लेकिन किंचित मलदोष लगते हैं। सम्यक प्रकृति दर्शन मोनी है लेकिन इतना डेंजर नहीं, हाँ मलोत्पत्ति का कारण है। सम्यक दर्शन तो रहता ही है इसके उदय में, इसका उदय जब तक रहेगा तब तक नियम से सम्यक दर्शन रहेगा, जीव सम्यक दृष्टि रहेगा, किंतु शेष जो दो कर्म हैं मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका उदय रहते हुए जीव को सम्यक दृष्टि रहना असंभव ही है, सम्यक दृष्टि नहीं रह सकता। अतत्व श्रद्धान रूप भाव शल्योत्पत्ति का अंतरंग निमित्त कारण और चारित्र मोहनी कर्मद्रव शैली शंका कांक्षा आदि असयम भाव शल्योत्पत्ति का अंतरंग निमित्त कारण। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी एक और असयम को भी पैदा करता है क्योंकि उसके उदय में कांक्षा परिणाम जो होते हैं वे परमार्थ शून्य रहते हैं, टारगेट में नहीं रहता परमार्थ, परमार्थ टारगेट में नहीं रहता, ये अनंतानुबंधी का लक्षण है और ये अनंतानुबंधी की विशेषता है। अनंतानुबंधी की यही पहचान है। हमारे ध्येय में टारगेट में धर्म अगर नहीं है तो समझ लेना वहां अनंतानुबंधी कर्म का उदय निश्चित है, और टारगेट में धर्म है तो उस समय में भी उसका लक्षण ये समझ लेना कि हमारे पास नियम से अनंतानुबंधी का उदय अब नहीं है। ये मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने का है, अनंतानुबंधी का उदय है या नहीं हम पहचान सकते हैं किसके आधार से? टारगेट के आधार से। कंपाउंड के अंदर हम रहें यह हमारा टारगेट है, पर कंपाउंड के गेट के बाहर हो जाएं तो हम टारगेट के बाहर हैं। कंपाउंड के अंदर रहकर धर्म को टारगेट बनाकर इस गेट के भीतर स्टार बनना है, 5 स्टार पंच परमिष्टि, 5 स्टार बनना है, तो अनंतानुबंधी को जगह नहीं मिलना चाहिए। इस कंपाउंड के अंदर इस गेट के भीतर अनंत अनुबंधी का प्रवेश नहीं हो। ये सावधानी के साथ चलना है, और आएगा भी नहीं, क्योंकि नाम ही प्रतिमा पार्क है, कैसे आएगा अंदर वो बाहर कहीं जाएंगे नहीं, कुसंग में जाएंगे नहीं, अनायतन हमारे लिए नो कर्म बन नहीं सकते, हम भीतर रहेंगे, हमारा कल्याण अवश्य होगा। सचित्त नो कर्म द्रव्यशल्य, नहीं ये हो गया, हाँ, नो कर्म द्रव्यशल्य में हो गया ना, यानी अनंतानुबंधी शंका भी उत्पन्न कर सकता है, यानी संशय, धर्म है क्या नहीं, मोक्ष तत्व है क्या नहीं, स्वर्ग नरक आदि इत्यादि है क्या नहीं, ये क्या चर्चा है, किसने कहा है, इस पर विश्वास नहीं होता, कई लोगों को कई जीवों को विश्वास नहीं होता, यही अनंत अनुबंधी का उदय, वो उदय में है इसलिए विश्वास नहीं होता, और जिसको उदय में नहीं है उनको फट से विश्वास में विश्वास होता है, तो वो है भव्य जीव, वो है सम्यक दृष्टि जीव, जिसको फट से विश्वास होता है वो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक्तु का लक्षण है। कांक्षा, हाँ कांक्षा क्या है, तो ये शल्य परिणाम है कांक्षा, धर्म करे और धर्म का फल वो मांगे, तो ये अनंतानुबंधी के बिना नहीं हो सकता, अनंतानुबंधी का उदय आने पर ही ऐसे परिणाम होंगे, और जब होंगे हम ऊपर के गुणस्थानों को छोड़कर नीचे आ गए होते हैं, उनका उदय आने पर ही ऐसे परिणाम होते। कांक्षा, असयम, असयम इंद्रिय विषयों में ज़्यादा रस लेना, जीवों के घात में, देखो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इन दोनों संयम को भूलकर यद्वा तद्वा प्रवृत्ति, ये असयम कहलाता है, ये असयम परिणाम भी, परिणाम के लिए कारण भी अनंतानुबंधी कषाय है। इस प्रकार सभी मिलकर के ये भाव शल्योत्पत्ति में अनंतानुबंधी कर्म भी कारण है और दर्शन मोहनी कर्म भी कारण। दर्शन मोहनी का कार्य इतना ही कि वह अंधविश्वास पैदा करता है जीव को, जीव अंधविश्वासी बन करके भ्रमण करता रहता है संसार में, और आत्मिक सुख को नहीं चाहता, इंद्रिय सुख को ही चाहता है एकांग एकांत से, तो यह अनंतानुबंधी का कार्य। तो अनंतानुबंधी के उदय में जीव इंद्रिय सुखों को भोगता हुआ भ्रमण करता रहता है संसार में। नो कर्म द्रव्यशल्य, भाव शल्योत्पत्ति के बहिरंग निमित्त कारण, भाव शल्योत्पत्ति के बहिरंग निमित्त कारण, कैसे भाव शल्योत्पत्ति के बहिरंग निमित्त कारण, इसके तीन भेद हैं, सचित्त नो कर्म द्रव्यशल्य, अचित्त नो कर्म द्रव्यशल्य, मिश्र नो कर्म द्रव्यशल्य। सचित्त नो कर्म द्रव्यशल्य में क्या क्या कारण पड़ते हैं नो कर्म के रूप में, तो देखो नौकर, माता पिता, भाई बहन, राजा, मित्र, पशु इत्यादि, ये इत्यादि बहुत सारे हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं, जिनसे हमारा संबंध होता है, वे सारे के सारे नौ कर्म हैं। ये नौ कर्म भाव शल्योत्पत्ति के बहिरंग सचित्त नौ कर्म द्रव्यशल्य हैं, ये सचित्त हैं, जीव हैं, इसलिए नौकर जीव है, माता पिता बहन पशु कुत्ता, कुत्ते को पालते हैं और उससे बहुत अनुराग होता है, अगर एकाएकी मर गया तो कितनी कितना विकल्प होता है जीव को, जैसे एक परिवार का ही व्यक्ति मर गया हो, ऐसे भाव भी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी शल्य की उत्पत्ति में कारण बन सकते हैं। कैसे कारण बन सकते हैं, मान लो कोई नौकर है, नौकर बहुत अच्छा था और वह मर गया या कहीं चला गया, वो गया तो आया ही नहीं, ऐसा हो गया, और आपका काम सब घर का रुक रहा है, और उस नौकर से ज़्यादा अनुराग भी हो गया है कि अच्छा है ये नौकरी, ऐसा नौकर तो मिलेगा नहीं कहीं भी, अब दूसरा आएगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से एक नौकर से भी अनुराग होता है कि नहीं होता है, और वो चला गया, फिर उनको लेकर के कैसे परिणाम होते हैं है? और उसी समय में मान लो आपको मरण का काल आया, और मरण के काल में मेरा नौकर मेरा नौकर मेरा नौकर गया गया गया, आप भी गए और नौकर तो पहले ही गया था, और फिर मरण के काल में नौकर रह गया, तो शल्योत्पत्ति होगी कि नहीं? अवश्य होगी, यानी आपकी आत्मा नौकर मैं बन गया। ऐसा होता है, किसी को धन से अनुराग होता है तो धन के अनुराग के कारण से मरण के काल में धन 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 कहता हुआ मरण करता है, तो वह सशल्य मरण करके त्रिरंची गति में जाता है, सांप बन करके पैदा हो जाता है, और वही तिजोरी के नीचे आकर के सांप बन करके बैठ जाता है जहां धन रखा था, या राजा हो तो उनके खजाने में पैदा हो जाता है, वो खजाने में जाकर के बैठ जाता है कुंडली मारकर। ऐसा ही हुआ था एक राजा का। एक राजा ने मरण के काल में सोचा था कि मैं अपने धन को सभी अपने परिवार पुत्र इत्यादि को बांट लूं और अंत में मरण कर लूं, लेकिन हुआ क्या, अंतिम समय तक वह निर्णय नहीं ले पाया और समय चला गया, और लास्ट में ये हो गया कि एकाएकी ही मरण आया, और उसको बड़े पुत्र को धन को कम दे करके छोटे पुत्र को धन ज़्यादा देना था, ये विकल्प था, और वह विकल्प कहा नहीं था किसी से, और मन में शल्य की तरह रख रख करके जीवन जी रहे थे। और उसने क्या कर दिया, लास्ट में देऊंगा देऊंगा कल देऊंगा और जरा समय व्यतीत होने के बाद देऊंगा, ऐसा कह करके समय निकल रहा था और बीच में मरण हो गया। मरण होने के बाद क्योंकि धन के प्रति आसक्ति के ये परिणाम पर के प्रति आसक्ति के परिणाम है, तो तिरंच आयु का बंध हो गया। तिरंच आयु का बंध तो पहले गुणस्थान में या दूसरे गुणस्थान में होता है, पहले गुणस्थान में रह करके तिरंच आयु का बंध किया और सांप बन करके खजाने में ही आया और वहां कुंडली मांड करके बैठ गया। अब वह सांप देखता है कौन आ रहा है खजाने में, बड़ा पुत्र आता है तो फुस्स करता है, और कोई आता है तो फुस्स करता, आने ही नहीं देता, और सभी डर के मारे वहां से हट जाते। सब लोगों ने कहा छोटे पुत्र से, तुम भी जाकर के देख लो जरा, वहां सांप बैठा हुआ है, क्या बात है, कहां से आ गया सांप, पता नहीं है, और जाकर के देख लो। तो छोटा पुत्र भी देखने के लिए जाता है, जिनके प्रति अनुराग था पूर्वों में उस सांप को, वह आता है देखता है पास चला जाता है, धन पर हाथ रखता है, वो सांप कुछ नहीं करता। ये शल्य है क्या नहीं? मरण से पहले जिसको जो देना है वो सब दे करके खत्म करना चाहिए। ये देना रह गया वो देना रह गया तो शल्य के परिणाम अंदर रह गए और आपका मरण हो गया, तो आप किसी भी गति में जा सकते हो, कोई भरोसा नहीं किस गति में जाएंगे। हाँ और क्या, स्वामी तो रख करके मरना है क्या? मरने से पहले ये प्रतिमा की सीढ़ियां कौन सी सीढ़ियां हैं? हाँ पहली सीढ़ी पर शुद्ध भोजन करते हैं, परिग्रह को, पंच पापों को एक सीमा रेखा खींच लेते हैं, एक मर्यादा आ गई, और फिर इसी परिग्रह को कम करते हैं प्रत्येक सीढ़ी पर, प्रतिमा पर। परिग्रह कम करते 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 जब नवीं प्रतिमा पर पहुंच जाते आप, तो सारे परिग्रह को परिवार को बांट देते हैं। किस प्रतिमा में? नवीं प्रतिमा में। वो नवीं प्रतिमाधारी नवीं मंजिल पर रहेगा, 11 मंजिल का बनेगा ना बिल्डिंग। नवी मंजिल पर रहेगा वो। तो ऐसी साधना हमें करना है, मरण से पहले ही परिग्रह का मोह छोड़ना है, परिग्रह मोह छोड़ करके ही जीना है। हाँ, आप परिग्रह रखें, दूसरी प्रतिमा में रख सकते हैं, पर शशल्य बन करके मत रखो, निश्चल्य होकर के परिग्रह को रख सकते हैं। आप सातवीं प्रतिमा तक खेती कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, धन के मालिक रह सकते हैं, धन के स्वामी बन करके रह सकते हैं, परिवार को उसमें पाल सकते हैं। बहुत सरल है प्रतिमा लेना, कठिन नहीं। लोग कुछ भी सोचते, अति सोचते हैं, कोई कोई प्रतिमा का लक्षण जिसे मालूम नहीं है वो सोचते हैं सब छोड़ना पड़ेगा क्या, सब ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा क्या, ऐसा सोचते हैं। जो व्यवस्था इतना सरल है, समझे तो है ही नहीं, और प्रतिमा कहती हो वो नहीं होता, ऐसा नहीं। प्रतिमा का बार बार चिंतन करो, मनन करो। वो जो पुस्तक है ना, उससे जिससे सिखाया था प्रतिमा का लक्षण, उसको बार बार पढ़ो। टाइम हो गया है जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।